Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today, being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on our telephone numbers 233-1-4444-2342-1050 and 233-1-0464. And do not forget to prefix 011 before these telephone numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra.
नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
जी धन्यवाद।
पहले हेडलाइंस के साथ निशित।
द हेडलाइंस, डोमेस्टिक मार्केट्स टू फोकस ऑन इंडियन एंड ग्लोबल मैक्रो डेटा एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स फॉर क्यूज नेक्स्ट वीक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल अर्जेस फार्मा इंडस्ट्री टू प्रायोरिटाइज इनोवेशन टू बिकम अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इंडियाज मेडिकल एडवांसमेंट्स एंड गोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट सर्ज फॉर द सिक्स्थ स्ट्रेट वीक। स्पॉट प्राइसेस जंप 2% लास्ट वीक टू $2,873 पर अउंस।
अगले हफ्ते देश के बाजारों का फोकस भारत और दुनिया के मैक्रो डेटा और कंपनियों की आमदनी पर रहने की उम्मीद। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फार्मा उद्योग से कहा मेडिकल क्षेत्र में भारत के विकास को रफ्तार देने के लिए नई खोजों को प्राथमिकता दें। और लगातार छठे सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने में तेजी। पिछले हफ्ते हाजिर कीमतें 2% बढ़कर $2,873 प्रति औंस पर पहुंची।
We begin with the story that after 2 weeks of continuous gains, Indian stock markets will monitor corporate earnings, retail inflation data and global markets for cues next week. Market attention is expected to turn towards macroeconomic indicators scheduled during the week, such as the Index of Industrial Production or IIP, Consumer Price Index, CPI-based inflation and Wholesale Price Index or WPI inflation. Inflation and industrial output data will be released on February 12th. Corporate earnings will also drive the market sentiment. Major companies reporting their December quarter results this week include Varun Beverages, Crisil, Eicher Motors, Apollo Hospitals, Grasim, Vodafone Idea, Steel Authority of India, HAL and Muthoot Finance. The market outlook will also be guided by major global economic data coming out this week. Macro data such as US CPI, jobless claims, industrial production, US retail sales, UK GDP data, China CPI will shape market sentiments in the next 5 days.
कॉलर्स के पास चलते हैं। जयपुर से महेश हमारे साथ हैं। महेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हाँ, नमस्कार सर।
नमस्कार।
देखो सर, एक बात समझनी थी
जी
कि जैसे आप समय समय पे ये कहते हैं कि यदि हमारा पहले से 6-7 म्यूचुअल अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है और अब हमको फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें बजाय किसी नए म्यूचुअल फंड के पहले के जो म्यूचुअल फंड है उन्हीं में से किसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन मैम, इसमें होता क्या है, जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मान लीजिए हमने 5-6 साल पहले किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, उस समय ये बहुत अच्छे थे, हमने इनकी पास्ट परफॉर्मेंस की बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन आज हम देखते हैं तो लगता है कि इनसे अच्छे भी म्यूचुअल फंड है, जो यदि हम उनमें उस समय किया होता तो इनसे अच्छा रिटर्न हमको आज मिल रहा होता। तो यदि ऐसे म्यूचुअल फंड हमारी नॉलेज में आ जाते हैं जो हमारे पहले के 6-7 म्यूचुअल फंड से बेटर है, तो क्या हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए मैडम? ये मेरे को समझ आता मैम।
जी महेश जी, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि जब आपने इन्वेस्ट करा था तब वो स्टार परफॉर्मर था अपनी कैटेगरी में और अब नहीं है, और अब नए फंड्स हैं जो आज की तारीख में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसलिए क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसके लिए एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस चेजिंग। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, प्रॉब्लम एक्चुअली हाइंडसाइट में आगे जाके पता चलती है कि कोई भी फंड किसी हर टाइम पे बेस्ट परफॉर्मर नहीं रहता। इवन जो बेस्ट ऑफ बेस्ट फंड्स होते हैं, ऑल ऑफ देम गो थ्रू फेजेस ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। तो मैं आपको यहां पर ये आउटलुक लेने के लिए बोलूंगी कि अगर आप जिसमें अभी इन्वेस्टेड हैं, मान लीजिए वो कुछ 4 से 5 फंड्स हैं, पहले आप ये इवेल्युएट करें, आप मान लीजिए इक्विटी में करना चाह रहे हैं, इनमें से 4-5 में से कोई ऐसा फंड है जो आज की तारीख में आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न दे रहा है वो काफी बेहतरीन रिटर्न है? ऐसा नहीं है, हो सकता है कि जो दूसरा नया फंड है वो 15% दे रहा है और ये आपको 12% दे रहा है, तो ये बुरा फंड नहीं है। ये एक पर्सपेक्टिव की बात हो जाती है। तो आप फोमो में ना पढ़ के ये देखिए कि अगर वो आपको रीजनेबल रिटर्न फिर भी दे रहा है, तो आपने जिस गोल के साथ उसमें इन्वेस्ट करा था लॉन्ग टर्म एलोकेशन को देखते हुए, अगर वो अभी भी आप अचीव कर रहे हैं तो आप उनमें करिए। और होता क्या है कि आपको एक बार ये ध्यान देना चाहिए कि अगर आप ऐसे परफॉर्मेंस चेस करते रहेंगे ना, तो 5 साल बाद या इवन 2 साल बाद ऐसा होगा कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारी फंड्स हो जाएंगे। और इसका भी एक नुकसान रहता है कि मतलब एज एन इन्वेस्टर हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है कि हम इसको ट्रैक ही नहीं करेंगे। फिर आपकी एक तरीके से हैबिट बन जाएगी कि जब कोई बेहतरीन फंड आज के दिन का बेहतरीन है आप उसी में इन्वेस्ट करेंगे, और आपका जो एक गोल आप अचीव करना चाह रहे हैं ना वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप पीरियोडिकली, जैसे मान लीजिए एनुअली, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं कि फंड्स कैसा कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा फंड है जिसकी परफॉर्मेंस देखकर आपको डर लग रहा है कि ये तो मतलब इसमें आज मतलब आगे नहीं बढ़ते रहना चाहिए, तो आप अपनी SIP वहां पॉज कर सकते हैं और किसी और फंड में कर सकते हैं। बट आई वुड से कि सिर्फ परफॉर्मेंस चेज वाले फैक्टर को ना ध्यान में रखते हुए रियल इम्प्लीकेशन देखने चाहिए हमें कि बस हम फंड्स ना बढ़ाते रहें। और आप एक बार इवैल्यूएट करें अपने 4 से 5 फंड्स में कौन सा अच्छा कर रहा है। अगर कोई मतलब पर्सपेक्टिव देखकर करिएगा रिटर्न का, 2-3% इधर उधर से वो परफॉर्मेंस उसकी पुअर नहीं हो जाती।
जी स्नेहा, और अगर वो थीमेटिक अगर फंड्स हों तो वो कई बार साइक्लिकल भी होते हैं,
बिल्कुल,
तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे आवर नेक्स्ट कॉलर इज मनोज फ्रॉम UP। मनोज वेलकम।
नमस्कार सर।
नमस्कार
सर, हमें जानकारी चाहिए, जैसे 4 साल की हमारी लड़की है, तो उस लड़की के लिए हमें कुछ नाम पर करना चाह रहे, तो उसके लिए कौन सा फंड सही रहेगा सर, बताएंगे?
जी मनोज जी, अगर आप अपने 4 साल की बच्ची के लिए कर रहे हैं तो मैं ये मान सकती हूँ कि आप काफी लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इक्विटी आपका गो टू एसेट क्लास होना चाहिए। यहाँ पर 2 चीजें देखने वाली हैं, एक तो इतना लंबा समय है तो हम थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि हम मिड कैप स्मॉल कैप जैसी कैटेगरीज में जा सकते हैं। बट अगर आप मान लीजिए आप एज एन इन्वेस्टर, आपको डर लगेगा अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख से सीधा 50,000 दिखती है, तो आई वुड से फिर आप अपना पोर्टफोलियो ऐसा बना सकते हैं कि आप कोई फ्लेक्सी कैप फंड चुन सकते हैं, जिसके लिए आप चुनाव पराग पार एक फ्लेक्सी कैप फंड का कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो जो मल्टी कैप फंड होते हैं वो 50% का अपना पैसा मिड और स्मॉल में रखते ही रखते हैं। फ्लेक्सी कैप भी कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द फ्लेक्सी कैप फंड सिर्फ लार्ज कैप फंड्स में कॉन्सेंट्रेट, लार्ज कैप कंपनीज में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो आप मल्टी कैप फंड भी देख सकते हैं, जिसके लिए आप ICICI, निपोन या कोटक के मल्टी कैप फंड देख सकते हैं।
जी, और स्नेहा, जो हम हमेशा दोहराते हैं कि छोटे निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि सारा पैसा एक बार ना लगाए, आप प्लीज एक बार बता दें।
हाँ जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला सुबोध जी आपने। SIP के माध्यम से हमें अपना पैसा तोड़ तोड़ के ही लगाना चाहिए, नहीं तो होता क्या है, जैसे मैंने बोला कि 1 लाख जब आप डाल देते हैं वो 50 दिख जाता है, तो डर के मारे हमें लगता है अब हम मार्केट से निकल जाएं और हम अपना लॉसेस को परमानेंट कर देते हैं। धीरे धीरे लगाना सही रहता है, और मतलब एक जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है वो काफी दूर तक जाता है।
जी, अगले कॉलर है पुणे से आलोक। आलोक स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
यस सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग मैडम।
गुड इवनिंग।
मैडम मेरे पास में अभी एटलीस्ट 5 लाख रुपए करीब है, जो कि मेरा एक एफडी मैच्योर हुआ है। अब मैं उसको एफडी में नहीं लगा के म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसे कुछ 4-5 फंड बता दीजिए जिसमें कि मैं करीब 1-1 लाख रुपए ऐसा करके 5 फंड में लगा सकूँ। मुझे कुछ अच्छे वाले फंड बता दीजिए जिसमें कि मैं करीब करीब 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म्स के लिए लगा सकूँ। ऐसे कुछ अच्छे फंड के नाम मुझे आप चूज करके बता दीजिए कि इसमें लगाना अच्छा रहेगा। और एक मैडम और एक क्वेश्चन मेरा और है कि इन जैसे भी जो आप फंड के नाम बताएंगे उसमें जो मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो मैं डायरेक्टली करना ज्यादा अच्छा रहेगा कि किसी ब्रोकर के थ्रू करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू करने से
आलोक जी जितना मैं आपका क्वेश्चन समझ पाई थी, आपके पास सरप्लस है जो आपकी एफडी मैच्योर होके मिल रहा है और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हैं, तो बाय लॉन्ग टर्म में ऐसा समझ रही हूँ कि आप 5 साल तक के लिए या उससे थोड़ा ज्यादा तक के लिए बने रहेंगे। इसमें फर्स्ट मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगी कि आपने बोला 1-1 लाख आप इन 5 फंड्स में लगा देंगे जिनके नाम हम बताएंगे। अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट जो अभी हमने पहले श्रोता को बताया था कि आप अगर आपके पास सरप्लस है भी आप इसको 1 से 1.5 साल के बीच में स्प्रेड करके ही SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करिएगा। अब आपने ये FD में लगाया हुआ था तो हमें ये पता नहीं है कि आप क्या पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आई वुड से आप प्योर इक्विटी में ना जाकर आप अग्रेसिव हाइब्रिड जैसे फंड ले सकते हैं। ये जो नए निवेशक हम रहते हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि थोड़ा सा पोर्शन अपना हम डेट में रखें। अगर आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में और भी FDs हैं जो डेट का केटर कर लेती हैं तो आप डेफिनेटली इक्विटी में लगा सकते हैं, बट प्योरली म्यूचुअल फंड्स के लिए आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स को देख सकते हैं, जिसमें अगर मैं आपको दो नाम बता दूं तो आप ICICI का इक्विटी एंड डेट फंड, कोटक का अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, मिराया एसेट का अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ऐसे कुछ फंड्स आप देख सकते हैं। अगर आप पहले से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं तो आप इक्विटी, ऑल इक्विटी से अपना पोर्टफोलियो डेफिनेटली बना सकते हैं, जिसमें आप फ्लेक्सी कैप फंड्स ले सकते हैं जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। और अगर आप अपना होराइजन 5 से ज्यादा कर सकते हैं, मान लीजिए 7 साल तक कर सकते हैं, तो आई वुड से आप थोड़ा सा अलग से एक पोर्शन स्मॉल और मिड कैप फंड्स को भी देख सकते हैं, जिसमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि 20-25% तक ही ये फंड्स आपका पोर्टफोलियो का पार्ट रहें, ना ही इनके रिटर्न्स को बढ़ता हुआ देखकर आप इसमें एक्सेसिव इन्वेस्ट कर रहे हो और ना ही इनमें जब रिटर्न्स गिरते हुए दिखते हैं तो आप उसी टाइम एग्जिट कर दें। आप इनमें इन्वेस्ट करिए जैसे कि आप 10-20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं।
Another important point, Sneha, here is that the caller was asking really to invest 5 lakh rupees, and that is like investing in one go. So that would be more or less kind of suicidal. It is always advisable to go for the
piece
sips.
By piece.
Yes, piece
Absolutely.
By piece.
And another question he asked was if he should invest directly तो आई वुड से अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं कि डायरेक्टली कैसे करना है, एंड वो कॉल कट हो गया, बट आई एम प्रिज्यूमिंग दैट आलोक बोलना चाह रहे थे जब आप ब्रोकर के थ्रू करते हैं तो कुछ कमीशन उनके पास चली जाती है, तो ऐसा लग रहा था मुझे कि ये
आप सीधे
वो समझते भी हैं कि इसके क्या नुकसान है, तो आई वुड से आप बिल्कुल डायरेक्टली
सीधे कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे फिनटेक एप्स हैं उसके थ्रू कर सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट पर जाकर उसके जरिए भी कर सकते हैं आप।
यस, एंड आवर नेक्स्ट कॉलर इज सुभाष फ्रॉम गुरुग्राम। सुभाष
जी सर, नमस्ते सर।
नमस्कार, सवाल पूछिए।
जी सर, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या अंतर है, कृपया हमें स्पष्ट समझाइए। और सर, जो SIP में निवेश किया जाता है, क्या वो सर एक एक निश्चित अवधि होती है, 5 साल 10 साल या 15 साल, या जो है सर उसमें क्या उसमें अमाउंट भी निश्चित होता है, कृपया बताने की कृपा करें मुझे।
जी सुभाष जी, तो जो आपका सवाल था कि SIP में डालने की कोई अवधि होती है, एक्चुअली एक टाइम से पहले तक आप कितनी भी लंबी SIP कर सकते थे, जिसे हम बोलते हैं परपेचुअल SIP, बट अभी कुछ करीब 1-2 साल पहले SIP सेबी का एक पेपर आया था जिसमें उन्होंने बोला कि अब परपेचुअल SIP ना रह के कुछ 30 साल की SIP रहेगी, तो वो एक लिमिट लगा दी गई है। बट आप SIP जब वो मैच्योर भी होने वाली होती है आप उसमें वापस स्टार्ट कर सकते हैं वही 30 ईयर्स के मैक्सिमम ईयर्स के साथ। जहां तक अमाउंट की बात है, ये फिक्स्ड एक्चुअली फंड बाय फंड होता है, जो कि जनरली 100, 500, 1000 ऐसी रेंजेस में ही रहता है. तो और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप इसमें टॉपअप भी कर सकते हैं. मान लीजिए आप एक ही फंड में दो SIPs कर सकते हैं, या फिर अपना अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं, अमाउंट चेंज भी किया जा सकता है. ये सारी सुविधाएं एज एन इन्वेस्टर हमें अवेलेबल होती हैं.
और SIP को कभी भी बंद किया जा सकता है.
बिल्कुल. बट मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि जब तक आपका आपको उस पैसे की जरूरत नहीं है, आप उसको चलने ही दीजिए, अगर आप इन्वेस्ट कर पा रहे हैं तो.
जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से यशपाल. यशपाल, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
थैंक यू. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग स्नेहा जी.
गुड इवनिंग.
माइक, आई हैव टू क्वेश्चंस. फर्स्ट इज रिगार्डिंग हाउ टू चूज अ गुड म्यूचुअल फंड स्कीम बेस्ड ऑन रेटिंग्स, बिकॉज डिफरेंट एजेंसीज हैव डिफरेंट रेटिंग्स, एंड हाउ रिलायबल इट इज, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉर्पस और AUM ऑफ द स्कीम, वेदर इट इज गुड टू गुड इफ आवर कॉर्पस इज मोर और लेस. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन SIP. It is said that when market falls, this more units are added and NAV is calculated accordingly. So I want to know what is the exact calculation and how it is beneficial to the investor. Thank you so much.
Right. So, Yashpal ji, the first question as to how to look at ratings when choosing a fund, I would say ratings should just play a one level parameter to select a scheme. First of all, we need to figure out as to what we are wanting to achieve with our investment, and what kind of time horizon we are wanting to continue investing for. So assuming ki aapka jo time period hai, that is let's say up to 1 to 3 years, then the asset class that you would look at for mutual fund schemes would be debt funds. So short duration funds can be your go-to product there. When it comes to long-term investments, then equity funds become your go-to products. So in case of equity funds, if you are looking at ratings generally, or if I can say, I can talk about value research star ratings. These ratings are primarily based on performance, risk adjusted performance. So that would mean that for a reasonable time period, if a fund has been doing well in its relative to its peers, then it will be higher on ratings, let's say a 4-star, 5-star and even a 3-star fund. So for starters, you can of course pick up funds which have, let's say, 3, 4, 5-star ratings, and then you need to come down the point or a parameter comes down to assuming you have a lot of funds with you, then out of that 3, 4, 5-star funds, if the fund that you are selecting is the AMCs are same as to your existing funds, then maybe that can be the next level check for the fund, because you already have that AMC, then let's have some AMC level diversification and we can go for a next fund. Another point that becomes important here is the kind of portfolio. If you are willing to look much deeper, or let's say you have some sense of, let's say you... there is one particular fund manager that you want to give your money to because you like his or her way of building a portfolio or constructing a portfolio. All of these kind of parameters can then be looked at. But simply basis the ratings, I would say just don't pick a fund. You should analyze these kind of factors also. Another question that you asked was regarding how big a role does, the AUM play. So generally, it has been seen that for small and mid-cap funds, if AUM hits, let's say, some insane level of marks, that can act as a drag on the performance. But all said and done, there are funds, and if I can take an example, the Nippon India Small Cap Fund is one fund which is by far the biggest small cap fund, and if I'm not wrong, it is actually maybe among the top 10 funds of when you look at all equity funds together, and that fund has consistently been doing well. So I would say AUM, bigger AUM does not really play that major a role, because history says there are funds who have been still delivering performance. But what you can do is that, if you see, let's say if you see a fund with a 50 crore AUM, that gives you some level of discomfort that whenever redemptions may hit this fund, you may feel worried. So in that case, you can have a base level AUM criteria when selecting funds. That is all I would say for AUM level criteria.
Also, it depends on the number of years the fund has been in market, Sneha. If let's say a fund has been there for 30 years or so,
right.
So naturally its AUM would be much larger as compared to someone who is a late entrant or a recent entrant in the market.
Absolutely.
Right. Yeah. Next caller is Shankar from Bhopal. Shankar, welcome.
Good evening, Market Mantra.
Good evening. Yeah.
Madam, my question is about tax saving funds, because in the wake of the recent budget, the tax taxation has been changed. So these funds will lose the flavor. So what to do with those people who have already invested, and we have substantial 1.5 lakh every year investment in these funds. So should we keep continue, or after 3 years we should pull out and do some change, get into some flexi cap fund, or remain in that fund, because these funds are performing much better or somehow better because of 3 years locking period. So these funds have done very well. But what is the future of these funds? Because the flow will change, so these funds will perform poorer or better or improve, or what do we do? Do we switch or we wait? Thank you.
Right. So, Shankarji, I would say that what will be the future of these funds is actually up in the air, just as the case with the old tax regime. However, if you have investments in these funds, and let's say if your ELSS investments are on autopilot, let them be, because we shouldn't make any knee-jerk tax moves, because it often so happens that tax rules change, but smart investing does not really go out of style. So we should continue, to save and invest and let compounding do its work. And you mentioned that should you switch from ELSS to Flexi? So ELSS funds structurally are same as Flexi Cap, the only difference being the mandatory 3-year lock-in.
3 years, yeah.
Right. So assuming that you have invested in those funds to get the tax break, which if you are changing your regime, you might not get, but you would still continue to get the benefit which equity investments, so to say, provide you with. So I would say we should continue investing. Let's see how this new income tax bill that is due to come next week comes once, and maybe then we can discuss.
And you rightly mentioned, Sneha, that the tax rules do change every year.
Yeah.
So yeah. So that's the constant here.
Ji. Agle caller hai Kolkata se Amir. अमीर स्वागत है आपका सवाल पूछें।
हाँ सर नमस्कार।
नमस्कार।
मेरा सवाल है मैंने तो म्यूचुअल फंड में कुछ भी नहीं जानता है तो मैंने सीखने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मैंने किया है 25 या 26 का जो फंड होते हैं उसमें इन्वेस्ट किया है लगभग 42,000 तो मैंने देखा है कुछ भी फंड में मेरे को 58% दिया है जैसे कि SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में डायरेक्ट फंड ग्रोथ उसके मुझे 58% मिल रहा है कुछ कुछ फंड मुझे 22% मिल रहा है और कुछ में 5% मिल रहा है तो मैं ऑलवेज देखता हूँ जो पोर्टफोलियो जो एनालिसिस का जो ग्राफ होता है ना तो मार्केट तो अभी भी ज्यादा डाउन चल रहा है तो मार्केट जब डाउन ग्राफ जो डाउन दिखता है ना तब मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो ये क्या सही है या रॉन्ग है क्या
जी अम्या जी जो आप मेंशन कर रहे हैं कि आपके पास 25 से 26 फंड्स हो चुके हैं जिनमें आपका एक अमाउंट है जिसको आप मतलब आप इन्वेस्ट ही तब करते हैं जब आपको मार्केट गिरी हुई दिखती है एक्चुअली इसका एक रेपरकर्शन यही रहता है एग्जैक्टली जो अभी करेंटली आपके पोर्टफोलियो में हो रहा है कि आपका पोर्टफोलियो एट अ फंड लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो अल्टीमेटली वी बिकम कलेक्टर्स ऑफ फंड बिकॉज मार्केट एक ही है जहां पे ये सब फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे बट एट द एंड ऑफ द डे ओवरलैप इतना भारी हो जाता है कि फायदा नुकसान एक्चुअली इतना मैटर ही नहीं कर रहा होता है क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही डाइल्यूट हो जाता है तो इसलिए बेहतर ये रहता है कि म्यूचुअल फंड्स के तरीके से आप इतना ज्यादा इसको ट्रेडिंग वाला इम्पैक्ट ना डाल के आप कुछ फंड्स अपने एलोकेशन एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके उनमें SIP के माध्यम से बने रहें क्योंकि अभी आपके लिए मेजर चैलेंज ये रहेगा कि इन 25 से 26 को हम कम कैसे करें और क्योंकि ऐसा हमेशा रहेगा मार्केट में कि कोई फंड अच्छा कर रहा है कोई फंड अच्छा नहीं कर रहा है पर इसका मतलब ये नहीं रहता कि हम अपना फंड पोर्टफोलियो इतना बड़ा बना लें
नेक्स्ट कॉलर इज अनिल फ्रॉम इंदौर अनिल वेलकम गुड इवनिंग
हमारा सवाल ये है
अनिल अनिल वी वुड रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑफ योर रेडियो सेट प्लीज
महिलाओं के लिए और ये सिटीजन के लिए क्या कोई विशेष रियायत दी जाती है क्या? क्योंकि हम एफडी करने जाते हैं बैंकों में, तो वहाँ पर सीनियर सिटीजन के कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है महिलाओं के, लेकिन म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार ऐसा नहीं होता है। इसका मुख्य कारण क्या है?
अनिल जी, आपका सवाल बहुत साफ नहीं था,
नहीं आया, लेकिन इन्होंने शायद पूछा कि म्यूचुअल फंड्स में सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान है क्या, कुछ छूट है, जैसे एफडी में अलग रेट है सीनियर सिटीजन के लिए?
अच्छा,
ऐसा कुछ नहीं
है। म्यूचुअल फंड एक्चुअली एक ऑल इक्वलाइजर तरीके का इंस्ट्रूमेंट रहता है, जहाँ पे
डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन,
बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे हर कोई आके सब बराबर है, सब इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं हूँ, आप हूँ, अंबानी हूँ, सबको एक ही प्राइस मिलेगा, कोई भी फंड में आप कर सकते हैं
जी। अगले कॉलर है कुमार चौरसिया औरंगाबाद से, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हाँ नमस्कार जी।
नमस्कार।
अभी एक कॉलर ने सवाल किया था वो ब्रोकर को लेकर के, कि डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए या ब्रोकर के थ्रू करना चाहिए।
जी।
अभी एक सवाल ये आता है सर कि जैसे अगर किसी पोस्ट ऑफिस में जाके अगर कोई एफडी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी एजेंट के थ्रू, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो अगर एजेंट के थ्रू किया जाए या डायरेक्ट किया जाए उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा उसको, चाहे डायरेक्ट करे चाहे एजेंट के थ्रू करे पोस्ट ऑफिस में या बैंक में।
वैसे
म्यूचुअल फंड में जब कोई इन्वेस्टमेंट अगर डायरेक्ट एएमसी की साइट से किया जाए, डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से जाके किया जाए, या फिर किसी ब्रोकर के थ्रू लेके किया जाए, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है बेनिफिट में, मतलब उसका क्या?
ठीक है, ठीक है
जी। तो जैसे हमने पहले बात करी थी, जब आप एक ब्रोकर के थ्रू करते हैं तो एक परसेंटेज ऑफ मनी होता है जो उनको एज कमीशन जाता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है आपके एक्सपेंस रेशियो में, जो आपके एनएवी मतलब जिस प्राइस पे आपको म्यूचुअल फंड मिल रहा है उस पे एनुअली या फिर डेली आप कह सकते हैं कट होता रहता है। तो ओवर लॉन्ग पीरियड ये जो डिफरेंशियल होता है खुद से करने का और ब्रोकर से करने का, वो कंपाउंड होके 10,000 तक का भी उसका फर्क पड़ सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इसलिए अगर आप खुद से कर पाते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है, आप समझ के डायरेक्ट,
हमेशा बेहतर होता है डायरेक्ट करना।
हाँ जी।
भिवानी से मोहित हमारे साथ है, मोहित सवाल पूछें।
संक्षेप में पूछें। जी संक्षेप में पूछें।
मैडम जैसे आप अभी कुछ कॉलर्स को कह रहे थे कि लमसम पैसा है उसके बावजूद भी एसआईपी करना ज्यादा ठीक है, तो मैडम मेरे साथ ऐसा 3 बार हुआ कि मेरे पास लमसम पैसा था लेकिन मैंने एसआईपी में इन्वेस्ट किया, मतलब 8 महीने के लिए 12 महीने के लिए उससे ज्यादा, और बाद में जब एसआईपी खत्म हुई तो मेरे पास ओवरऑल जितनी यूनिट थी वो उतनी यूनिट से कम थी जो मैं जिसने एसआईपी का कमा दिया उस दिन मेरे को लमसम इन्वेस्ट करता तो उतनी मिलती मेरे को। जैसे मान लीजिए मैंने एसआईपी के लिए कमा दिया उस दिन मेरे को 100 यूनिट मिलती, लेकिन मैंने एसआईपी के बाद मेरे को
94-96 मोहित जी, अगर आप वो लमसम डालते और मार्केट 10% गिर जाती तो भी आपका लॉस ही होता, जिससे अगर आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप इससे घबराते नहीं तो बहुत ही बढ़िया बात है। बट जो जनरली इट सो हैपेंस कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो जब 1 लाख को 80,000 होते हुए देखते हैं वो घबरा के पैसे निकाल लेते हैं, तो ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है वो हमारी पूंजी पे रिफ्लेक्ट कर जाता है।
यस, एंड इन सम अदर न्यूज स्नेहा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैज अर्ज्ड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू प्रायोरिटाइज क्वालिटी एंड इनोवेशन, पोजीशनिंग इटसेल्फ एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इंडियाज मेडिकल एडवांसमेंट्स। एड्रेसिंग द 63rd एनुअल डे प्रोग्राम ऑफ द इंडियन Drug Manufacturers Association, IDMA, in Mumbai, Mr. Goyal said that while the Indian pharmaceutical industry has made significant progress, there is still a long way to go. He emphasized that all companies in the sector, both large and small, must work together as a cohesive unit to make the country proud.
और सोने पर नजर डालते हैं। वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में लगातार 6ठे सप्ताह भी तेजी देखी गई। पिछले हफ्ते सोना 2% से ज्यादा उछल गया। अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी तनाव की वजह से निवेशकों ने सोने में पैसा लगाना सुरक्षित समझा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना सप्ताह के अंत तक 2% बढ़कर $2,873.63 प्रति औंस तक पहुंच गया। पिछले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर शुल्क लगाने की धमकी के बाद एक व्यापारिक युद्ध शुरू कर दिया है। उन्होंने मेक्सिको और कनाडा को तो एक महीने की मोहलत दी है। राजनीतिक और वित्तीय अस्थिरता के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है और व्यापारिक संघर्ष की आशंकाओं के बीच इसकी कीमतें बुधवार को $2,882.16 प्रति औंस तक पहुंच गई थी। प्रमुख वैश्विक बैंक सिटी बैंक का अनुमान है कि 2025 में इसकी कीमतों में तेजी बनी रहेगी और ये $3,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। और पिछले हफ्ते चांदी भी लगभग 4% उछलकर $32.41 प्रति औंस पर पहुंच गई। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के बहुत अच्छे जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू स्नेहा। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, डोमेस्टिक मार्केट्स टू फोकस ऑन इंडियन एंड ग्लोबल मैक्रो डेटा एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स फॉर क्यूज नेक्स्ट वीक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल अर्जेस फार्मा इंडस्ट्री टू प्रायोरिटाइज इनोवेशन टू बिकम अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इंडियाज मेडिकल एडवांसमेंट्स। एंड गोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट सर्ज फॉर द सिक्स्थ स्ट्रेट वीक। स्पॉट प्राइसेस जंप 2% लास्ट वीक टू $2,873 per ounce. That's it in this edition of Market Mantra. Until the next time, goodbye. Market Mantra.